क्लासेस ज्वाइन करनी है। सॉरी मेरा जिक्र अभी तक खराब चल रहा है आपसे, तो आदत खाऊं। ओके الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورة الأعلى کے ترجمے سے آج ہم اپنی کلاس ریزیوم کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورة الغاشية کا ترجمہ تفصیل مکمل کر لی تھی حج سے پہلے والی کلاسز کے اندر۔ یہ میسج میں ان کو پرائیویٹلی بھیج دیتا ہوں عاقب صاحب کو۔ پہلی آیت ہے اس سورت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی، جس کا کہ با محاورہ ترجمہ بنتا ہے کہ تسبیح بیان کر، پاکی پاکیزگی بیان کر اپنے سب سے بلند رب کے نام کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو لنک بھیجا تھا، ایک تو معرف القرآن کا لنک ہوتا ہے جس سے کہ ہم تفسیر کرتے ہیں، اگرچہ کہ ترجمہ بھی ہم وہاں سے فالو کرتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ تفسیر کے لیے ہے معرف القرآن۔ اور جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس کے لیے آپ کو لنک بھیجا تھا حافظ نظر احمد صاحب کا آسان ترجمہ قرآن مجید، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہم ترجمہ اس وقت فالو کر رہے ہیں۔ تو سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت کا با محاورہ ترجمہ ہو گیا، اس کے بعد جو لفظی ترجمہ ہے اس میں ایک ایک لفظ کا الگ الگ آپ کو ترجمہ اور تھوڑی بہت گرامر تھوڑی بہت آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے سبح، ٹھیک ہے، سبح، ہا کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ فعل امر ہے، یعنی یہ کمانڈ ٹینس ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے تسبیح بیان کر، یہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ ہا کے نیچے جو زیر لگا ہوا ہے وہ کیوں ہے، وہ اس لیے ہے صرف کیونکہ سبح کو اسم جو اس کے بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو اسم کے ساتھ جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہا کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے۔ حرکت کس کو کہتے ہیں، زیر، زبر اور پیش، یہ تین حرکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، واولز، واول ساؤنڈز ان کو انگلش میں کہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی حرکت ضروری ہے، ادروائز آپ سبح کو اسم کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں جوڑ سکتے بھائی، اس لیے کہ اسم کا جو لفظ ہے وہ تو الف سے شروع ہوتا ہے بظاہر، تو اس کو سبح اس میں اس طرح پڑھ لیتے تو نہ جوڑنے کی، یعنی جو نہ جوڑنے میں جو پرابلم ہے اس کی کیا ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اسم جو کا لفظ ہے نا اس کے اندر جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف اصل میں الف تو ہے نہیں، پہلی بات، ٹھیک ہے، کیوں الف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے ایک ہے زیر، یہ ہے اسم، رائٹ، تو الف کے نیچے ایک زیر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ الف جو ہوتا ہے نا لیٹر عربی زبان میں، اس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، نہ زیر ہوتا ہے، نہ زبر ہوتا ہے، نہ پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو الف ایک ایسا خاص لیٹر ہے कि जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती है, ना जेर ना जबर ना पेश, बल्कि उसके ऊपर एक सुकून होता है। ठीक है, एक सुकून यानी जिसको हम जज़्म भी कह देते हैं, राइट। तो इस वजह से ये अलिफ है नहीं, नज़र तो अलिफ आता है लेकिन अलिफ नहीं है। तो फिर ये क्या है? ठीक है, फिर ये हमजा है असल में, हमजा। ठीक है, तो हमजा है, उसके नीचे एक जेर है, इस्म। ठीक है, लफ्ज होता है इस्म, नाम, सभी जानते होंगे इस बात को। ठीक है, तो ये है हमजा। अच्छा, हमजा जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, जिन जिस हमजा से लफ्ज शुरू होता है ना, जिन जिस हमजा से लफ्ज शुरू होता है वो दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं हमजा वसली और दूसरे को कहते हैं हमजा कतई। वसली और कतई, ठीक है। कुछ अल्फाज के शुरू में हमजा हमजा कतई होता है और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके शुरू में हमजा जो होता है वो हमजा वसली होता है। ठीक है, फर्क क्या है इन दोनों के दरमियान? फर्क ये है कि जो अल्फाज हमजा कतई से शुरू होते हैं ना, तो उनको तो हमजा के साथ ही पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, हर हाल में, चाहे वो स्टैंड अलोन हो, चाहे वो किसी के साथ ज्वाइन करके पढ़े जा रहे हो, आपको हमजा प्रोनाउंस करना जरूरी है। ठीक है, वो हमजा कतई वाले अल्फाज होते हैं। लेकिन जिन अल्फाज के अंदर हमजा कतई नहीं होता बल्कि हमजा वसली होता है, ठीक है, तो उनमें ये होता है कि जब वो स्टैंड अलोन हो, यानी अकेले कहीं लिखे हुए हो, तो फिर तो आप हमजा को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी लफ्ज़ से जोड़ के पढ़ना है आपको, ठीक है, यानी उनसे पहले कोई लफ्ज़ है जिसके साथ आपको उनको जोड़ना है, तो उस सूरत में हमजा वसली जो होता है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसको कह देते हैं कि हमजा को गिरा देते हैं, पढ़ने में उसको गिरा देते हैं। ठीक है, तो इस्म का जो लफ्ज़ है ना, इसके अंदर जो हमजा होता है जिससे कि ये लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है, ये होता है हमजा वसली। ठीक है, ये होता है हमजा वसली, वाव सौद लाम या वसली। ओके, तो इस वजह से क्योंकि सब्बह के साथ इसको जोड़ के हमने पढ़ना है, ठीक है, जोड़ के पढ़ना है, तो इस वजह से हमजा वसली को हमें गिराना पड़ेगा, इसको हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हमजा वसली तो गिर जाएगा इस सूरत में, राइट, बिकॉज यू हैव टू ज्वाइन सब्बह विद इसम, ज्वाइन करना है ना, तो हमजा वसली को गिराना पड़ेगा बिकॉज ये हमजा वसली है। ठीक है, जब आपने हमजा वसली को गिरा दिया तो क्या बच गया? सीन बच गया, सीन सुकून के साथ है। ठीक है, तो अब आपको सीन को असल में हा के साथ जोड़ना है। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स, हा को, सब्बेह का जो हा है उसको इसम के सीन के साथ जोड़ना है। ठीक है ना, इसम के सीन के साथ जोड़ना, क्योंकि हमजा वसली तो गिर गया, अब रह गया सीन। ठीक है, लेकिन सीन जो है वो सुकून के साथ है और हा भी सुकून के साथ, राइट, दोनों सुकून है, तो दो सुकून को आप आपस में जोड़ नहीं सकते। ठीक है, कैसे आप पढ़ेंगे इसको? अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं ना, सब्बेह को सिम के साथ जोड़ के जोड़ने की पड़े कुछ यानी कोशिश करूं, तो ये बनेगा सब्बेहस्मा, कुछ अजीब तरीके की आवाज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मसला क्या बना? मसला ये बना कि हापी भी सुकून है और सीन पर भी सुकून है, इन दोनों को आप ज्वाइन करके पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा? रेजोल्यूशन ये होगा कि जो पहला वाला लेटर है सुकून के साथ, जो कि हा है, ठीक है, इसको आपको कोई ना कोई हरकत देनी पड़ेगी, कोई ना कोई हरकत देनी पड़ेगी। तो अरब जो है वो कौन सी हरकत देते हैं? यूजुअली कौन सी हरकत देते हैं? वो कसरा वाली यानी जेर वाली हरकत दे देते हैं पहले वाले सुकून को। ठीक है, तो इस वजह से जो हा के ऊपर सुकून था ना, उसको फिर जेर से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तब ये बन जाता है सब्बे हिस्मा। ओके, तो मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि असल वर्ड जो है वो है सब्बे और उसके बाद वर्ड है इस्म। ठीक है, तो जो आपको हा के नीचे जेर नजर आ रहा है, उसकी रीजन ये है कि दो सुकून जमा हो गए थे और दो सुकून जमा होने में आप प्रोनाउंस कर नहीं सकते, इस वजह से जो पहला सुकून होता है उसको जेर से चेंज किया जाता है ताकि उसको हम पढ़ सकें जोड़ करके, तो इस वजह से सब्बे हिस्मा हो गया। तो तस्बीह बयान कर इसम की, नाम की, किसके नाम की? रब्बे का, तेरे रब के रब्बे का में रब जो है वो परवरदगार को कहा जा रहा है, यानी अल्लाह ताला। और का की जो प्रोनाउन इसके साथ जुड़ी हुई है, का क्या है? जमीर है, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो रब्बिका का तर्जुमा बना रब तेरा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, माँ कैफा हालुका, कैसा है हाल तेरा, हालुका, राइट, हाल तेरा। उसी तरीके से रब्बुका का मतलब होता है रब तेरा, ठीक है। तो इस्मा रब्बिका इस्म तेरे रब का, ठीक है। फिर उसके बाद है अल आला, अल आला का मतलब है सबसे ज्यादा बुलंद, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचा। अला अला का मतलब होता है ऊंचा, और आला जो है सुपरलेटिव फॉर्म है, यानी सबसे ऊंचा। तो तेरा रब जो कि सबसे ज्यादा ऊंचा है, सबसे ज्यादा बुलंद है। तो सब हिस्मा रब्बे कल आला, तस्बीह बयान कर अपने रब के नाम की जो के सबसे ज्यादा बुलंद है, ठीक है। तो ये चार अल्फाज बजायर आपको नजर आ रहे थे, लेकिन इनकी लफ्जी तर्जुमा इस तरह से बनता है। किसी को कोई सवाल है इसमें से किसी लफ्ज के तर्जुमे तर्जुमे एक्सप्लेनेशन के बारे में? आसिफ साहब ने हैंड रेज किया है, मतलब कोई सवाल है किसी को? ठीक है, तो ये पहली आयत मुकम्मल हुई। अगर किसी को सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, जिसने पैदा किया फिर ठीक किया, ठीक है। तो इस आयत के अंदर अल्लज़ी जो पहला लफ्ज है, ये एक किस्म का इसम होता है, जिसको इसम मौसूला कहते हैं, ठीक है। आई थिंक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको इंग्लिश में, थिंक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको, खैर इसम मौसूला कहते हैं अरबी में इसको। और इसका तर्जुमा जिसने से करते हैं, अल्लज़ी, जैसे आप बहुत ज़्यादा कुरान में हदीस में देखते होंगे अल्लज़ीना का लफ्ज़ बहुत आता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो अल्लज़ीना का वाहिद अल्लज़ी होता है, अल्लज़ीना जमा के लिए होता है, अल्लज़ी वाहिद के लिए होता है। तो अल्लज़ी का तर्जुमा जिसने से करते हैं। खलका ये एक फेले माजी है, पास्ट टेंस का वर्ब है, जिसका तर्जुमा होता है उसने तख्लीक किया, ही क्रिएटेड। तो अल्लज़ी को जब खलका के साथ जोड़ के तर्जुमा करेंगे तो क्या बनेगा? द वन हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, बल्कि जिसने तख्लीक किया, ठीक है। तो अल्लज़ी जोड़ने से फिर इसका तर्जुमा जिसने तख्लीक किया से किया जाएगा। फसव्वा, फसव्वा में दो अल्फाज हैं, एक है फा जो कि एक लेटर है बज़ाहिर, लेकिन ये ग्रामर के अंदर में ये हर्फ कहलाता है, ठीक है। और हर्फ अतफ इसकी किस्म बनती है, हर्फ अतफ, क्योंकि हरूफ अरबी जुबान के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें से हरूफ तहज्जी से तो हर कायदा पढ़ने वाला बच्चा या बड़ा वाकिफ होता है हरूफ तहज्जी क्या होते हैं, ठीक है। हिज्जे किए जाने वाले हरूफ, जैसे अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ठीक, ये सब क्या है? हिज्जे करने वाले हरूफ हैं, तो इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। लेकिन ग्रामर में जब आप आते हैं तो हरूफ की बहुत सारी और किस्में भी होती हैं, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाई है हरूफ जर होते हैं, हरूफ अतफ होते हैं, ठीक है, हरूफ जाजमा होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे हरूफ होते हैं। तो ये उनमें से हरूफ अतफ में आता है फा। तो तर्जुमा इसका करते हैं फिर, ठीक है, या इंग्लिश में करेंगे देन, THEN। उसके बाद लफ्ज़ है सव्वा, सव्वा क्या है? ये भी एक फेल है माजी का, फेले माजी, ठीक है। सव्वा का मतलब होता है उसने बराबर किया या उसने ठीक किया, ठीक है, बराबर सराबर किया या ठीक ठीक किया, ठीक है। तो सव्वा का मतलब है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को अरेंज कर देना, ठीक है। तो अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, कि जिसने तख्लीक किया फिर ठीक ठीक किया, यानी तख्लीक जो है वो ऐसे ही रैंडमली तख्लीक नहीं कर दिया, बहुत ही जल्दी में उल्टा सीधा तरीके से चीज़ों को नहीं बना दिया, बल्कि बहुत ही परफेक्टली बनाया, परफेक्ट प्रोपोर्शंस में बनाया, परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनाया, परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाया, राइट। तो फसव्वा में फिर सारे मानी आ जाते हैं, अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, ठीक है। कोई सवाल दूसरी आयत के बारे में? अल्लज़ी हरफ इसम मौसूला, ठीक ये लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह जो ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इल्मुन नहव के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं। वल्लज़ी कद्दरा फहदा, ठीक है तीसरी आयत है, और जिसने अंदाज़ा ठहराया फिर राह दिखाई, ठीक है। तो इसके अंदर भी वाव जो है वो हरफ अतफ है, अतफ आयन से बनता है, आयन तो फा अतफ, ठीक है। आतिफा भी कहते हैं और अतफ भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। तो तर्जुमा इसका और से करते हैं, उर्दू वाला और, इंग्लिश वाला एंड। अल्लजी ये वही इसम मौसूला है जो पिछली आयत में था, यानी जिसने। कद्दरा, कद्दरा यानी यानी अंदाजा ठहराया, ठीक है। अंदाजा ठहराया का मतलब क्या है कि मिकदार, उर्दू में कहते हैं मिकदार, मिकदार मुकर्रर कर दी, यानी उसने जो जो चीजें तख्लीक करी ना उनको ठीक ठीक भी तख्लीक किया, और हर एक की पर्पस, यहाँ मिकदार से मुराद जो है वो पर्पस है, ठीक है, कि उसका पर्पस भी सेट कर दिया कि इसको जो मैंने बनाया है क्यों बनाया है और इसने उस पर्पस को अचीव कैसे करना है, ठीक है। सब कुछ जो है अल्लाह ताला ने डिटरमिन कर दिया, प्री डिटरमिंड, इसको कहते हैं प्री डिटरमिनेशन ऑफ फेथ, तकदीर, राइट। तो कद्दरा के अंदर तकदीर के मानी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर दिया, तकदीर कर ठहरा दी, अंदाजा ठहरा दिया, ठीक है, पर्पस सेट कर दिया, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो जो क्रिएशन बनाई उस क्रिएशन के फिर कद्दरा भी कर दिया उसके साथ, ठीक है, फसवा भी यानी सवा भी कर दिया उसके साथ और कद्दरा भी कर दिया उसके साथ। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या करी, फा हदा। तो यहां पर फा वही वाला फा है जो कि फसवा के साथ था, हर्फ अतफ, इसका तर्जुमा देन से करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन असल में जो लफ्ज है वो है हदा, हदा ये है फेले माजी, तो इसका तर्जुमा क्या होता है, हिदायत दी, ठीक है, हिदायत दी। अब यहां पर जो हिदायत है, यहां पर हिदायत से मुराद ये है, यानी ये दीन इस्लाम वाली हिदायत मुराद नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और ना जो है वो आमाल की तौफीक वाली हिदायत मुराद है, बल्कि यहाँ पर हिदायत मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है ना, तो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपना खाना पीना कैसे इकट्ठा करना है, राइट, कैसे जो है वो यानी अपने बेसिक ज़रूरियात पूरी करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें उसको अल्लाह ताला ने सुझा दी, सुझा दी, राइट, या समझा दी। समझाना ज़रा सा मुश्किल वर्ड लगता है क्योंकि उसके अंदर एक ज़रा लेक्चर का कॉन्सेप्ट आता है समझाने से, लेकिन सुझाना, सुझाना का मतलब होता है कि उसके यानी उसके खमीर के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दी, ठीक है। जैसे कंप्यूटर आप खरीदते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ होती है प्री लोडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि उसके रोम में होती है, ठीक है, जो कि उसके सीपीयू के अंदर चिप्स के अंदर पहले से पड़ी हुई होती है, और एक चीज़ होती है जो कि आप बाहर से चलाते हैं, बाहर से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर हदा से मुराद जो है प्री इंस्टॉल्ड, ठीक है, जो कि सीपीयू लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके अंदर, ठीक है। क्रिएटर ने जो डाली होती है, जो कंप्यूटर क्रिएट करता है ना मैन्युफैक्चरर, तो वो सीपीयू के अंदर ये सारी चीज़ें फीड कर देता है, बेसिक लॉजिक। तो यहाँ पर हदा से मुराद बेसिक लॉजिक है, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज हर क्रिएशन की इसके अंदर मौजूद है। हदा का आम तर्जुमा जो है वो रास्ता बताया से करते हैं, लेकिन रास्ता बताया कि मैं मजीद तफसील आपको बता रहा हूँ कि रास्ता बताया से यहाँ पर कौन सा वाला रास्ता बताया मुराद है, ठीक है। यहाँ पे यानी जो पत्थर क्रिएट किया अल्लाह ताला ने, तो पत्थर के अंदर भी अल्लाह ताला ने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी, जो दरख्त क्रिएट किया दरख्त में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी सारी की सारी, और जो यानी जानवर का बच्चा क्रिएट किया या जानवर क्रिएट किया तो जानवर में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी, जी कैसे उसने दाना चुगना है, कैसे जो है वो अपने परों को हिलाना हिलाना है ताकि वो उड़ जाए, राइट, और कैसे उसने लैंड करना है, कैसे उसने टेक ऑफ करना है, सारी इंफॉर्मेशन हदा के अंदर आ गई, ठीक है। कोई सवाल? उसके बाद वल्लजी अखरजल मरआ, ठीक है, यहाँ पे जो अल्लजी है उसको मद के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाया नबी अलैहिस्सलाम सलाम को, मद के साथ यानी खींच करके। पीछे जो अल्लज़ी हैं दो अदद, वो बग़ैर मद के थे, ठीक है। तो ये मद के साथ क्यों है? क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसे पढ़ा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही पढ़ा, तो सहाबा कराम ने भी ऐसे ही पढ़ा, तो सहाबा के जो स्टूडेंट्स ताबईन थे उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ा, तो तबा ताबईन ने भी ऐसे ही पढ़ा, ठीक है। हत्ता कि जब कुरान को लिखा गया इन सारी तफासिल के साथ, तो उसके अंदर ये उन्होंने एक कॉइन किया, इस तरीके की हम एक सिंबल डाल देंगे तो पढ़ने वाले को फिर हम बता देंगे कि ये जो सिंबल जहाँ पे पढ़ा होगा ना, उसको आपने खींच के पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे, ये तिलावत कहलाती है, ठीक है। सारी की सारी तला यतलू, जैसे जैसे पीछे वालों ने पढ़ा वैसे वैसे आगे वालों ने पढ़ा, इसको कहते हैं तिलावत करना। तो मद का जो साइन है ये तो बाद में कॉइन हुआ, लिख दिया गया कि भाई इस तरह का साइन आपको नजर आए तो आप खींच के पढ़ें, ठीक है। तो इसका कोई वजह नहीं है, यानी आपसे पूछें कि जी पीछे जो दो अल्लज़ी थे उनको खींच के क्यों नहीं पढ़ा, और ये वाला जो अल्लज़ी है इसको खींच के क्यों पढ़ा, तो इसकी कोई ग्रामेटिकल लॉजिक नहीं है, ठीक है। कि नहीं जी ऐसा जो अल्लज़ी होता है ना उसको खींच के पढ़ते हैं, और वैसा जो अल्लज़ी होता है उसको खींच के नहीं पढ़ते, इसमें कोई रूल नहीं है, बल्कि इसमें फॉलोइंग है सारी की सारी, ठीक है। कॉपी कैट, राइट, बच्चों को कहते हैं ना कॉपी कैट, तो यहाँ कॉपी कैट वाला मामला है। तो वल्लज़ी अखरजल मरआ, अखरजा ये भी एक फेले माजी है जिसका तर्जुमा होता है उसने निकाला, ठीक है। फेले माजी जिसका तर्जुमा उसने निकाला यानी उसने खारिज किया, एक्सट्रैक्ट किया एक्चुअली, ठीक है। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे निकाला से मुराद ये नहीं है कि जैसे कमरे से बाहर निकाल दिया आपने किसी को, ठीक है, बल्कि किसी चीज के अंदर से आपने जो एक्सट्रैक्ट करने वाला होता है ना, अखज करने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, एक्सट्रैक्ट करने वाला वो है यहाँ पर। तो एक्सट्रैक्ट किया अल मरआ, किस चीज को एक्सट्रैक्ट किया? अल मरआ, मरआ कहते हैं चारे को, ठीक है, बल्कि असल में ये चिरागाह को कहते हैं, अल मरआ, ठीक है। तो चिरागाह यानी जहां पर जानवर जाकर के चरते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ चरते हैं? किसी पथरीली जमीन पर तो जाके नहीं चरते ना, किसी पानी के तालाब में तो जाके नहीं चरते, बल्कि जानवर कहाँ चरते हैं? जहां पर चारा मौजूद होता है, ठीक है। तो चरागाह कहते ही उस जगह को है जहां पर चारा मौजूद होता है, यानी उनके खाने के लिए या तो सब्ज पत्ते पत्तों वाली चीज होती है या सूखे पत्तों वाली चीज होती है, तो सब्ज चारा हो या सूखा चारा हो, इधर वे यहाँ पर चारा मुराद है, ठीक है। तो जिसने कि चारा निकाला, ठीक है, सब्ज चारा यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सियाको सबाक के अतबार से सब्ज चारा ही बनेगा, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट आयत के अंदर बात हो रही है कि उस सब्ज चारे को फिर सूखा कर दिया, ठीक है, बल्कि सूखा भी कैसा, बिल्कुल काला सूखा। तो नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फजा अला हु गुसान अहवा, फिर उसे खुश्क सियाह कर दिया, ठीक है। तो चिरागा को सब्ज कहेंगे भी इसीलिए ना, क्योंकि ये चिरागा जो होती है ना, इसमें जो चीजें जो होता है वो चारा तो उगी हुई शक्ल में होता है, ठीक है, यानी ये एक पैस्चर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो पैस्चर में तो चीजें जमीन में उगी हुई होती है ना, उनको अभी आपने काटा नहीं होता, ठीक है। तो जानवर जब उसमें जाता है तो वो उस उगे हुए घास फूस को खा रहा होता है, तो वो तो सब्जी होता है यूजुअली, अनलेस के उसको पानी ना दें तो कुछ अरसे में वो सूख करके जल जाएगा, ठीक है, लेकिन यूजुअली वो ग्रीन ही होता है। जब आप उसको वहां से काट लेते हैं और काट करके फिर आप अपने घर में ले आते हैं या अपने अस्तबल में ले जाते हैं या बैकयार्ड में रख देते हैं, ठीक है, तब वो फिर सूख जाता है, राइट। तो इस वजह से अलमरा जो है वो यानी सब्ज चरागाह को ही कहेंगे। अच्छा, उसके बाद है जो फजा अला हु, तो इसमें तीन अल्फाज हैं, ठीक है। पहला लफ्ज है फा, वही फा आतिफा जिसका तर्जुमा देन से करा, ठीक है, तो फा का तर्जुमा तो देन से कर दिया। फिर उसके बाद है लफ्ज जाला, जाला फेले माजी है, पास्ट टेंस, बहुत ही सिंपल फेले माजी है। जाला का मतलब होता है उसने कर दिया, ठीक है, उसने या वो हो गया से भी ट्रांसलेट करते हैं और उसने कर दिया भी, तो यहाँ पर कर दिया के मफहूम बनते हैं। तो जाला का मतलब उसने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हु क्या चीज है? ये प्रोनाउन है जिसको अरबी में ज़मीर कहते हैं, गौत से ज़मीर, ठीक है। ये जो प्रोनाउन है ये जाला फेल के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, इस ये प्रोनाउन ये जाला फेल का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसको अरबी में मफ़ऊल कहते हैं। यानी जाला का जो काम है वो हु के ऊपर हो रहा है, हु प्रोनाउन के ऊपर हो रहा है। लेकिन ये हु प्रोनाउन, इसका नाउन क्या है? यानी हर प्रोनाउन का कोई नाउन होता है ना, जैसे आप कहते हैं ना अहमद इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ही प्रोनाउन है। तो इस ही का नाउन क्या है? अहमद, राइट। तो ही इज पॉइंटिंग बैक टू अहमद, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो हु प्रोनाउन है, तो इसका नाउन क्या है? कोई आप में से बताए किस नाउन की तरफ ये पॉइंट कर रहा जी? अलमरा, ठीक है। तो इसका नाउन जो है वो अलमरा है, ठीक है। तो अल्लजी नहीं है बल्कि अलमरा है, क्योंकि उसने कर दिया उसको, ठीक है। तो इसमें ना एक्चुअली जाला जो 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 वर्ब है ना, उस वर्ड के अंदर भी एक प्रोनाउन है, और हु जो जो वर्ड है वो खुद एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो हु जो है वो अलमरा की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अल्लजी जो जो जवाब दिया ना आपने, तो अल्लजी जो नाउन है ना, तो इसका प्रोनाउन किधर है? कोई बता सकता है? अल्लजी का भी एक प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन किधर है? अल्लजी का प्रोनाउन जो है ना वो जाला के अंदर छुपा हुआ है, राइट। जाला जो फेल है उस फेल के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि मैंने जाला का आपको तर्जुमा बताया ना, उसने कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो लफ्ज उस है ना, उस, ये भी तो प्रोनाउन ही है। ही मेड, जाला का तर्जुमा इंग्लिश में कैसे करेंगे? ही मेड। तो ही क्या है? प्रोनाउन ही है ना, ठीक है। तो ही का अगर मैं आपसे पूछूं कि ही मेड में ही प्रोनाउन का नाउन किधर है, तो उसका जवाब होगा अल्लाह, ठीक है। यानी अल्लाह मेड, तो अल्लाह को पिछली आयत के अंदर अल्लजी से पॉइंट किया गया था, राइट। तो जाला के अंदर भी एक प्रोनाउन छुपा हुआ है, और जाला के बाद भी एक प्रोनाउन है, लेकिन जाला के अंदर जो प्रोनाउन है उसका नाउन अल्लजी है, और हु जो प्रोनाउन है उसका नाउन अलमरआ है। तो तर्जुमा क्या बना? फिर उसने कर दिया उसको, यानी अलमरा को, क्या कर दिया? गुसान कर दिया। गुसान का तर्जुमा होता है खुश्क, ठीक है, ड्राई कर दिया उसको, खुश्क कर दिया। और वो खुश्क भी ऐसा खुश्क जो कि अहवा है। अहवा का मतलब क्या? सियाह, बहुत ज्यादा डार्क, या सबसे ज्यादा डार्क, वेरी वेरी डार्क, ठीक है। अहवा ये सुपरलेटिव फॉर्म है, जैसे आला सुपरलेटिव फॉर्म थी ना, सबसे ज्यादा ऊंचा, उसी तरीके से अहवा जो है ये भी सुपरलेटिव फॉर्म है, जिसको इसम तफदील कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा काला, बहुत पिच डार्क। तो फिर उसने कर दिया उस चारे को खुश्क सियाह, ठीक है। तो ये पूरी यानी शॉर्ट ग्रामर भी हो गई इस आयत की। अच्छा, ठीक है, कोई सवाल? अच्छा, इसके बाद छठी आयत बड़ी इंटरेस्टिंग, और इसके अंदर तफसीर में बड़े यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आयत से रिलेटेड। आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आयत है, सनुक्रिओ का फला तंसा, ठीक है। तर्जुमा इसका बा मुहावरा, कि हम जल्द आपको पढ़ाएंगे फिर आप नहीं भूलेंगे। इसमें जो पहला लफ्ज है स नुक्रिउ का, ये भी तीन अल्फाज हैं, जैसे फजा अलहू में तीन अल्फाज थे, उसी तरह इसमें भी तीन अल्फाज हैं। कौन कौन से? पहला लफ्ज है सीन, सिर्फ सीन, ठीक है, ये पहला लफ्ज है। और दूसरा लफ्ज है नुक्रिउ, नुक्रिउ, ठीक है। और तीसरा लफ्ज है का, ठीक है। तीनों क्या क्या है? पहला लफ्ज जो सीन है ना, इसको ये एक हर्फ है। अरबी में अल्फाज तीन किस्म के होते हैं, अरबी में जो अल्फाज होते हैं अरबी ग्रामर के हिसाब से अगर बोला बोला जाए तो तीन किस्म के होते हैं। एक होता है इसम, नाउन्स जिनको कहते हैं, दूसरे होते हैं फेल जिनको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, और तीसरे होते हैं हर्फ जिनको अंग्रेजी में शायद पार्टिकल्स कहते हैं या प्रपोजिशंस। ये दोनों मिक्स, दोनों कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रपोजिशन या पार्टिकल्स, ठीक है। तो सीन जो है ये हर्फ है, इसम फेल और हर्फ में से ये हर्फ है। ये एक ऐसा हर्फ है जो कि अनकरीब या नियर फ्यूचर के मानी देता है, फ्यूचर के मानी देता है, ठीक है, फ्यूचर। तो इसका तर्जुमा करते हैं उर्दू में अनकरीब से, तो अनकरीब। नुक्रिऊ, नुक्रिऊ क्या चीज है, ये एक वर्ब है फेल, ठीक है। किस किस्म का फेल है ये है फेल मुदारे, और इसका टेंस बनता है जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम यानी प्लूरल फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब द वन हु स्पीक्स, स्पीकर, ठीक है। तो नुक्रियो का तर्जुमा बनता है हम पढ़ाएंगे, और दूसरा तर्जुमा इसका क्या होता है, हम पढ़ाते हैं। क्योंकि अरबी में जो फेल मुजारे होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करता है, राइट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करता है। तो नुक्रियो क्योंकि फेल मुजारे है तो इसके दोनों मतलब बनते हैं, हम पढ़ाते हैं और हम पढ़ाएंगे, ओके, दोनों मीनिंग्स बनते हैं इसके। यहां पर इसका तर्जुमा फ्यूचर से किया जा रहा है, क्यों, इसलिए कि इससे पहले अल्लाह ताला ने सीन लगा दिया है, तो सीन चूंकि फ्यूचर के लिए होता है तो वो इस फेले मुजारे को फ्यूचर में लॉक कर देता है और प्रेजेंट के मानी इसमें से निकाल देता है, ठीक है। तो प्रेजेंट को निकाल दिया इसमें से और सिर्फ फ्यूचर के लिए ये लॉक हो गया, ठीक है, टाई हो गया फ्यूचर के लिए। तो सनुक्रियो का तर्जुमा फिर बनेगा अनकरीब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर सीन नहीं होता ना तो फिर एक अनक्लेरिटी रहती कि हम पढ़ाते हैं या हम पढ़ाएंगे, क्या मतलब है इसका भाई, ठीक है। तो सीन से ये बात क्लियर हो गई कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि अनकरीब हम पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे, का एक प्रोनाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है तुझे, तू, ठीक है, वी विल टीच यू, ठीक है। तो का जो है ये प्रोनाउन, ये किसकी तरफ पॉइंट करता है, जब किसी एक मर्द से बात हो रही हो तो उसके लिए का की जमीर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी एक औरत से अगर बात हो रही हो, एक औरत से, तो उसके लिए की जमीर इस्तेमाल करते हैं, काफ के नीचे जेर, ठीक है। तो का मर्द के लिए, एक मर्द, और की एक औरत के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या पता लग रहा है कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली मुखातिब है कि हम तुझको पढ़ाएंगे अनकरीब, हम अनकरीब तुझको पढ़ाएंगे और अदब के साथ हम अनकरीब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तीन अल्फाज थे इस एक बज़ाहिर लफ्ज के अंदर, तीनों क्लियर है। पहला हर्फ तकरीब कहलाता है अनकरीब का मतलब, दूसरा फेल मुजारे हो गया, और तीसरा जमीर जो कि सेकंड पर्सन मेल को पॉइंट कर रही है, वाहिद मुजक्कर हाजिर, वाहिद मुजक्कर हाजिर को पॉइंट कर रही है। अनकरीब हम तुझको पढ़ाएंगे, फा ला तंसा, फा वही जिसका तर्जुमा फिर से कर देते हैं, देन से कर देते हैं। इसमें और भी बहुत सारी तफसील है लेकिन वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा हूँ, बस इसका हरफ अतफ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका तर्जुमा देन से कर देते हैं, हरफ अतफ है बस, ठीक है। तो देन ला तंसा, ला क्या है, ये हरफ नफी कहलाता है नेगेशन के लिए, नेगेशन या नफी के लिए, ठीक है। तो नहीं, तंसा तू भूलेगा, तंसा का तर्जुमा कैसे, तू भूलेगा, तो ला तंसा तू नहीं भूलेगा, ठीक है। तो तंसा जो है ये भी फेले मुजारे है, कहते हैं ना उर्दू में भी निसियान, निसियान का मतलब क्या होता है, भूलना, ठीक है। तो ये अरबी का ही लफ्ज है, नसिया यंसा निसियानन, ठीक है। तो ये यानी ये इस वर्ड का की हकीकत है, नसिया यंसा निसियानन। तो यंसा जो है वो फेले मुजारे होता है इसका, और इसको तनसा क्यों बोला, क्यों पढ़ रहे हैं तनसा? तनसा इसलिए क्योंकि ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? यू विल फॉरगेट, तनसा का मतलब होता है यू विल फॉरगेट। तो ला तनसा, यू विल नॉट फॉरगेट। तो यानी हम अनकरीब आपको ऐसे पढ़ाएंगे ये कुरान शरीफ कि आप नहीं भूलेंगे। सो आप परेशान मत हो इसको याद करने के लिए। जो नबी अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद होते थे कि भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके मुझे एक दफ़ा सुना दिया और ये इतनी अहम बात उन्होंने सुनाई है तो पता नहीं मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे, तो अल्लाह ताला ने परेशानियों को दूर फरमाया कि आप परेशान ना हो, हम आपको याद करवा देंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इल्ला मा शा अल्लाह, इल्ला ये के जो अल्लाह ताला चाहे, ठीक है? अब ये ज़रा सा एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह आप तफसीर में इसको डिस्कस करेंगे। यानी सिवाय जो अल्लाह आपको भुलाना चाहे, ठीक है? मतलब इसका क्या बनता है, मगर जो अल्लाह चाहे, यानी क्या अल्लाह चाहे, जो अल्लाह आपको भुलाना चाहे वो आप भूल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो लफ्जी तर्जुमा इल्ला, इल्ला इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होता है, एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है? तो एग्जेम्प्ट करने के लिए किसी सिचुएशन को रूल में से, ठीक है? तो उसको इस्तिस्ना कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं ना इस्तिस्ना। तो इसका तर्जुमा मगर से करते हैं, या इल्ला भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मा ये एक इसम है जो कि अल्लजी ही की तरह का एक इसम है। तो अल्लजी को आपको बताया था इसम मौसूला, तो माँ भी एक इसम मौसूला है, ठीक है? और इसका तर्जुमा भी जो से करते हैं, ठीक है? जो या जिससे, दोनों से कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो माँ का तर्जुमा यहाँ पर जो से करेंगे, शाआ, ठीक है? शाआ का मतलब क्या होता है, उसने चाहा, ठीक है? उसने चाहा, ये होता है शाह का मतलब, ठीक है? और यानी ये एक माजी का फेल है, फेले माजी है, उसने चाहा, ठीक है? अच्छा, इस फेले माजी के बाद लफ्ज़ है अल्लाहू। तो अल्लाहू का जो लफ्ज़ है ना, इसको देख करके हमें साफ पता लग रहा है कि शाह का जो फाइल है वो अल्लाह है, ठीक है? यानी शाह का तर्जुमा मैंने आपको क्या बताया, उसने चाहा। तो उसने तो एक प्रोनाउन है ना, जो कि यानी शाह के अंदर छुपा हुआ है, राइट? जैसे कि आपको पीछे बताया था जाला के अंदर एक प्रोनाउन छुपा हुआ है, ठीक है? उसी तरह शाह के अंदर एक प्रोनाउन छुपा हुआ है। शाह का इंग्लिश में तर्जुमा कैसे करेंगे, ही डिजायर्ड, ही डिजायर्ड, तो ही शाह के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है? लेकिन चूंकि यहां पर शाह के बाद एक नाउन आ रहा है, ठीक है, अल्लाह, अल्लाह नाम है ना अल्लाह ताला का, तो ये नाउन है। तो ये जो नाउन है ना, ये है हालत रफा में, ठीक है? ये हालात जो हैं वो आप लोगों को हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये हालत रफा में, रफा, ठीक है? तो हालत रफा में जो नाउन होता है ना, अगर वो किसी वर्ब के बाद आ रहा हो तो वो उस वर्ब का डूअर बन जाता है, ठीक है? वो उस वर्ब का डूअर होता है। तो शाह एक वर्ब है और इस शाह के बाद नाउन अल्लाह आ रहा है, अल्लाह का लफ्ज, ठीक है? और वो हमें नजर आ रहा है कि हालत रफा में, क्योंकि इसके ऊपर एक पेश लगी हुई है, इस वजह से हालत रफा में, ठीक है? तो शाह का जो डूअर है वो है अल्लाह। तो इसका तर्जुमा फिर हम इस तरह करेंगे, अल्लाह ने चाहा। फिर हम ये नहीं कहेंगे उसने चाहा, क्योंकि उस जो है ना वो यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है अल्लाह से, ठीक है? तो हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम नाउन इस्तेमाल करेंगे, और वो नाउन क्या है, अल्लाह, ठीक है? तो अल्लाह ने चाहा। अच्छा, अब आप जरा बैक ट्रैक करें पिछले लफ्ज की तरफ, मा शा अल्लाहू। तो मा जो इसे मौसूला है उसके साथ जोड़ करके जब शा अल्लाहू का तर्जुमा करेंगे ना, तो वो बनेगा जो अल्लाह ताला चाहे, जो अल्लाह ताला चाहे, या जो अल्लाह ताला ने चाहा, लफ्जी तर्जुमा जो अल्लाह ताला ने चाहा, ठीक है? इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने चाहा। ये इसका लफ्जी तर्जुमा बन जाएगा, ठीक है, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने चाहा, यानी आप भूलेंगे लेकिन अल्लाह की मर्जी से भूलेंगे, आप अपनी किसी कोताही की वजह से या गफलत की वजह से नहीं भूलेंगे। जैसे हम भूलते हैं ना, तो हम जो भूलते हैं तो हम यूजुअली अपनी गफलत की वजह से भूलते हैं, ठीक है, तो उस वजह से इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को भूलना ऐसा भूलना नहीं था, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में गफलत नहीं थी, ठीक है, कोताही नहीं थी, बेतवज्जुही नहीं थी। तो नबी अलैहिस्सलाम का भूलना जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ बिल्ला किसी कोताही की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको डायरेक्ट अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाएगा, और अल्लाह ताला ने कुरान में उसको यानी क्लियर भी कर दिया कि मेरी ही तरफ मंसूब करो, मैं ही तुम्हें भुलाऊंगा, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने चाहा, ठीक है। यहाँ पर वो नासिख मनसूख की बहस है जो कि आप में से किसी ने सवाल भी किया था, और इंशाल्लाह उसको फिर हम तफसील में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इन्नहु यालमुल जहरा वमा यखफा, 7वीं आयत, बेशक वो जानता है जाहिर और जो पोशीदा है, ठीक है। इन्नहु, इन्ना इसका तर्जुमा बेशक से करते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इंडीड या वेरली से इसका तर्जुमा करते हैं। ये ख़ास किस्म का के हरूफ होते हैं, ठीक है, हरूफ मुशब्बहा बिलफेल इनको कहते हैं, 6 होते हैं ये, इन्ना अन्ना कअन्ना लईता लाकिन्ना लअल्ला, ठीक है, जो ग्रामर की बुक्स हैं उनके अंदर ये लिखे हुए होते हैं हरूफ मुशब्बहा बिलफेल। तो इन्ना उनमें से पहला है, तर्जुमा इसका बेशक से करते हैं, उसके साथ लगी हुई है एक ज़मीर इन्नहू, तो तर्जुमा होगा बेशक वो, बेशक ही, इंडीड ही, राइट। तो ये हु ज़मीर जो है वो किधर पॉइंट कर रही है, वो अल्लाह के की तरफ पॉइंट कर रही है, जो कि पिछली आयत में आया था, इसका नाउन लफ्ज़ अल्लाह है, तो बेशक वो यानी बेशक अल्लाह, ठीक है। या अलमु, वो जानता है, या अलमु अलिमा या अलमु, ठीक है, इल्म रखना जिसको कहते हैं ना उर्दू में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या अलमु का मतलब वो जानता है और वो जानेगा, दोनों मीनिंग्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से पता लगता है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला के इल्म की बात हो रही है ना, तो अल्लाह ताला का इल्म जो है वो फ्यूचर में कोई थोड़ी है खाली, अल्लाह ताला का इल्म जो है वो तो हर चीज़ पर मुहित है, तो इस वजह से इसका तर्जुमा सिर्फ फ्यूचर से नहीं कर सकते, बल्कि इसका तर्जुमा जो है वो प्रेजेंट से करेंगे कि वो ऑलरेडी जानता है, ठीक है। यालमु, वो जानता है, किस चीज़ को जानता है, अल जहरा, ठीक है, जहर कहते हैं जो अपेरेंट होती हैं चीज़ें ना, जो कि जोर आवाज़ से चीज़ें होती हैं ना, उनको जहर कहते हैं, ठीक है, यानी जाहिर, ज़ाहरी चीज़। आपको पता होगा कि जो 5 नमाज़ें हैं दिन के अंदर, तो मर्द जब जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं 5 नमाज़ें, तो इमाम जो होता है वो फजर, मगरिब और इशा के अंदर जहरी किरात करता है, और जोहर और असर के अंदर सिर्री किरात करता है। क्या मतलब कि फजर में और मगरब और इशा के अंदर जोर आवाज से किरात करता है, कि जो कि उसके पीछे या उसके बराबर में अगर कोई खड़ा बंदा हो उसको आवाज आए, उसको जहरी कहते हैं। तो जहरी का मतलब क्या हुआ, बुलंद आवाज या जाहिरी आवाज या अपेरेंट, ठीक है, तो जहर उसको कहते हैं। तो यालमुल जहरा का मतलब अल्लाह ताला जानता है जो जाहिर है, जो चीज़ें सामने नजर आती हैं अल्लाह ताला उनको भी जानता है, वमा यखफा, और जो छुपी हुई चीज़ें अल्लाह उनको भी जानता है, हाँ खुली हुई जाहिर चीज़, ठीक है, चाहे वो मामला कोई हो तो मामले को कहेंगे खुला हुआ मामला, आवाज़ हो तो उसको कहेंगे बुलंद आवाज़, ठीक है। तो जिस तरह भी आप एक्सप्लेन करना चाहें, लेकिन मफहूम इसका यही है कि जो कि छुपा हुआ ना हो उसको जहर कहते हैं, ठीक है। तो छुपे हुई चीज़ को क्या कहते हैं, खफी, राइट। तो इसका फेले मुजारे बनता है यखफा, वो छुपा हुआ है, यखफा का तर्जुमा वो छुपा हुआ है, और माँ के साथ जोड़ करके इसका तर्जुमा करें तो चूंकि वो माँ मौसूला है, ठीक है, जिसका तर्जुमा जो से करते हैं, तो जो छुपा हुआ है, माँ यखफा का तर्जुमा फिर बनेगा जो छुपा हुआ है। ठीक है, तो क्या बना लफ्जी, इन्नहू बेशक वो जानता है जहर को भी और जो छुपा हुआ है या पोशीदा है। यखफा ये फेले मुजारे हो गया, इसका माजी क्या होता है, खफा या खफिया, खफिया यखफा एक्चुअली माजी बनता है खफिया और मुजारे बनता है यखफा। ठीक है, आयत नंबर 7 तक किसी को कोई सवाल है? अच्छा, आयत नंबर 8, वनुयस्सिरुका लिलयुसरा। ये दो अल्फाज, बज़ाहिर दो अल्फाज वाली आयत है, लेकिन इसकी तफसीर में हम पूरा आपके सामने तसव्वुफ के अबवाब बयान कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वाई इज जहर इन माजी एंड यखफा इन मुजारे। जहर माजी में नहीं है जहर, ठीक है, तो ये तो फेल है ही नहीं ना, इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है, और आपको याद होगा कि अलिफ लाम तो इसम की अलामत होती है, तो अल जहर जो है ना ये है असल में इसम। ठीक है, द वन दैट इज अपेरेंट। ठीक है, तो अब ये आपका सवाल हो सकता था कि वाई अल्लाह यूज वन थिंग एज इसम एंड द अदर थिंग एज अ वर्ब। ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला ने जो अपना कलाम रखा है उसके अंदर जो खूबसूरती है अल्लाह ताला ने ऐसे ही पैदा करे कि पहले अल्लाह ताला ने यालमु फेल जिक्र किया और पहली चीज़ को उस फेल का मफूल बनाया, तो मफूल तो इसम होना ज़रूरी है ना, मफूल को फेल तो नहीं हो सकता। ठीक है, मफूल तो इसम ही होता है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने खूबसूरती इसमें अपनी हिकमत के तहत समझी कि जो छुपी हुई बात है ना उसको मैं अलखफ़ी के तौर पर अगर यहाँ पर रखूँगा तो कलाम में खूबसूरती नहीं होगी। ठीक है, कि अलजहरा वल खफा, ठीक है, वल खफा यानी जो चीज़ छुपी हुई है, तो ऐसे भी आ सकता था, हमारे जैसा कोई बंदा होता तो शायद ऐसे ही लिखता। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने खूबसूरती इसमें समझी कि जो दूसरी वाली बात है पोशीदा वाली बात, उसको मैं इसम मौसूल और फेले मुजारे की कॉम्बिनेशन के साथ उसको प्रेजेंट करूँ, तो वो कलाम यानी बहुत ही ज़्यादा अरबी कवायद के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यानी फसीह बलीग कलाम होगा। ठीक है, तो पहला इसम है, दूसरा फेल है। ठीक है, अच्छा, वनु यस्सिरु का लिल युसरा, और हम आपको आसान तरीके की सहूलत देंगे। ठीक है, ये हाफिज नजर अहमद ने इसका तर्जुमा ऐसे किया, लफ्जी तर्जुमा व नु यस्सिरु का। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सनुक्रियु का था और फजा अलहू था, यानी बज़ाहिर एक लफ्ज लेकिन असल में तीन अल्फाज, तो इसमें भी तीन अल्फाज हैं। एक्चुअली नहीं, इसमें तो दो अल्फाज हैं, पहला लफ्ज है नुयस्सिरु और दूसरा लफ्ज है का। ठीक है, अच्छा, नुयस्सिरु क्या है? जी जरा आप में से कोई बताए नुयस्सिरु क्या है, अगर और तफसील कोई बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं, एटलीस्ट बेसिक तो जवाब दे सकते हैं। नुयस्सिरु क्या चीज़ है? अरबी लफ्ज के तीन अकसाम में से एक कौन सी वाली किस्म है? नुयस्सिरु मुकम्मल तो नहीं हो सकेगा, फेल है, फेल। ठीक है, तो इसम फेल और हर्फ में से ये फेल है, लेकिन फेल किस तरह का है? फेल मुजारे। ठीक है, माजी नहीं है, ये फेल मुजारे है, और मुजारे में से ये मजीद तफसील इसकी क्या है, जमा मुतकल्लिम। ठीक है, जमा मुतकल्लिम का ये सीगा है यानी टेंस है जमा मुतकल्लिम। तो नुयस्सिरु का तर्जुमा बनता है हम आसान करेंगे। ठीक है, मदद नहीं, मदद का मतलब मदद के लिए नुसरत का लफ्ज इस्तेमाल होता है, नसरा यंसुरु, यहाँ पर यस्सरा युयस्सिरु है, युसर जैसे कहते हैं ना युसरा, यहाँ पर एक बाकायदा कंपनी भी बनी हुई है यसरा क्या नाम है उसका, यस्सर एक्चुअली। तो नुयस्सर हम आसान करेंगे, ठीक है, नुयस्सिरु एक्चुअली, ठीक है, हम आसान करेंगे। किस चीज को आसान करेंगे? का को आसान करेंगे, का को आसान करेंगे का मतलब क्या भाई? हम आसान करेंगे, तर्जुमा क्या बनेगा? सही लफ्जी तर्जुमा बताएं जरा, क्योंकि अभी आप लोगों को सनुक्रयो का मैं यही बात समझाई थी, तो उसी को इस्तेमाल करते हुए नुयस्सिरु का तर्जुमा करें जरा, लफ्जी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा नहीं, तफसीरी तर्जुमा नहीं, लफ्जी तर्जुमा नुयस्सिरु का। बिकॉज ये जो लफ्जी तर्जुमा है ये बहुत माशाल्लाह गहरा तर्जुमा है, बहुत इसके अंदर गहराई है, मसाइले तसव्वुफ इसके अंदर छुपेगा। नुयस्सिरु का क्या लफ्जी तर्जुमा है? का क्या है? जमीर है ना, प्रोनाउन है ना, करेंगे आपके लिए, नहीं ना, ये तो लफ्जी तर्जुमा तो ना बना ना। नुयस्सिरु का सनुक्रियो का क्या तर्जुमा था? हम पढ़ाएंगे तुझको, यही तर्जुमा था ना, सनुक्र यानी नुक्रियो का तर्जुमा था हम पढ़ाएंगे तुझको। तो नुयस्सिरु का तर्जुमा क्या बना, जो शेरशाह साहब ने लिखा कि आपको आसान करेंगे, हम आसान करेंगे आपको, आपके लिए नहीं, हम आसान करेंगे आपको, राइट? ये है इसका लफ्जी तर्जुमा। नहीं, याद रखना आसान करेंगे नहीं, यहाँ याद रखने वाली बात गुजर चुकी, ठीक है, वो पीछे थी आयत नंबर 6 में, यहाँ पर वो वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पर दूसरी बात हो रही है, हम आसान करेंगे तुझको, ठीक है, बंदे को आसान करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम बंदे थे ना, तो हम आपको आसान करेंगे। अच्छा, किस लिए आसान करेंगे आपको? लिल युसरा। अब यहां पर है युसरा के लिए, क्योंकि ये लाम जो है ना, ये लाम जर है, और इसका तर्जुमा लिए से करते हैं, फॉर इंग्लिश में कहते हैं फॉर, एफ ओ आर, ठीक है, और फिर उसके बाद लफ्ज है अल युसरा, लफ्ज अल युसरा और लाम जर इससे पहले था, तो यहां पर भी वही हो रहा है कि लाम जर जो लाम जेर के साथ है उसको अल युसरा के साथ जोड़ के पढ़ना है। तो अल युसरा शुरू किस चीज से हो रहा है? हमजा से शुरू हो रहा है, लेकिन वो हमजा हमजा वसली है, ठीक है, और जब जोड़ा जाता है तो हमजा वसली को गिराना पड़ता है, तो इस वजह से हमजा वसली तो गिर जाएगा। तो लाम जर जो है वो हमजा वसली के बाद क्या चीज थी? लाम था ना, अल अल का लाम, राइट? तो लाम जर को अल युसरा के लाम के साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? लिल युसरा, ठीक है, वरना हकीकत में ये लफ्ज क्या है? ली अल युसरा, ठीक है। तो पहली वाली आयत में जो आपको बात बताई थी वो आखिरी आयत, जो आज की क्लास की आखिरी आयत है, उसमें रिपीट हो गई, ठीक है, कि हमजा वसली से शुरू हो रहा है अल युसरा का लफ्ज, तो जोड़ने की सूरत में हमजा वसली को गिरा देंगे, और फिर पीछे वाले लफ्ज को हमजा वसली के बाद जो लेटर आ रहा है उससे जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो यहां पर चूंकि वो दो साकिनों वाला मसला तो है नहीं, क्योंकि लाम के नीचे जेर पहले ही मौजूद है, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो वो मसला नहीं है कि जी आपको सुकून को प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो इस वजह से पहले सुकून को जेर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ तो पहले ही जेर मौजूद है लाम के नीचे, ठीक है। तो लिल युसरा, अब अल युसरा का तर्जुमा जो होता है ना वो सिंपल तर्जुमा, आसान तरीका, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत तफसीर मौजूद है इसके अंदर, तो वो तो हम आपको मसाइल में देखेंगे। तो इसका लफ्जी तर्जुमा इस छोटी सी आयत का ये बना, और हम आसान कर देंगे तुझको आसान तरीके के लिए, हम आसान कर देंगे तुझको आसान तरीके के लिए, ठीक है। इस आयत के अंदर हमारे बड़े मसलों का हल है, ठीक है, जो हम परेशान रहते हैं ना कि जी ये कैसे होगा, और हम नेकी कैसे करेंगे, और हम गुनाह से कैसे बचेंगे, उन सब का आंसर जो है ना वो इसे एक छोटी सी आयत के अंदर मिल गया, ठीक है। बता रहे कि तौफीक मांगते हैं कि इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो वेंसडे को होगी इंशाल्लाह इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो अगर किसी को तो आप पूछ लीजिए। कैसे आसान करेंगे। हाँ ये तफसीर में करेंगे, चल आज तो टाइम हो गया मुकम्मल। दीनो युसरन, हाँ दीनो युसरन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो असल में हमने इसको मैसअप किया हुआ है, दीनो युसरन वाले कॉन्सेप्ट को। तो दीन युसर नहीं है असल में, दीन अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं ना उसके लिए उसको आसान बना देते हैं, वरना दीन आसान नहीं है। ठीक है, तो दीन यसन का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है ना, उसकी तफसीर है, उसके पीछे तफसील है उसके अंदर। ठीक है, क्या कैसे नहीं दीन आसान, कैसे नहीं है भाई, पाबंदियां हैं दीन के अंदर, ये ना करो, उधर मत जाओ, ये ना खाओ, ये ना पियो, उधर मत देखो, कितनी पाबंदियां हैं। पाबंदियां आसान काम होता है कोई, कैसे आसान करेंगे। वो आप तफसीर पढ़ लें अगली क्लास से पहले इंशाल्लाह, थोड़ी आपकी भी बैकग्राउंड पहले से बन जाएगा। बाकी डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।